ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने तक सिंधु जलसंधि स्थगित रहेगी। दिल्ली में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने LNJP अस्पताल में 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार 100 दिन की उपलब्धियों पर कल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं के कामकाज की समीक्षा की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जिस तरह धरा यानी जमीन बदलती रहती है लेकिन जल तत्व समान रहता है, साहित्य भी कुछ वैसा ही होता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि साहित्य सम्मेलन में वक्ता और प्रतिभागियों के बीच साहित्य रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा।
आज का साहित्य उपदेशात्मक नहीं हो सकता, आज का साहित्य प्रवचन नहीं हो सकता, आज का साहित्य नीति ग्रंथ नहीं हो सकता। आज का साहित्य का सहयात्री की तरह साथ साथ चलता है, देखता है और दिखाता है, अनुभव करता है और करवाता है। मैं आशा करती हूँ कि इस साहित्य सम्मेलन में वक्ताओं और प्रतिभागियों के बीच रचनात्मक प्रभाव स्थापित होगा।
सम्मेलन में कवि सम्मेलन, भारत का नारीवाद साहित्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशाएं जैसे विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन का समापन देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा के साथ होगा। साहित्य अकादमी के सहयोग से राष्ट्रपति भवन इस 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उद्घाटन समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा देश भर के साहित्यकार भी उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भाषाओं के मामले में भारत का दुनिया में अद्वितीय स्थान है और इसकी भाषाओं का साहित्य ज्ञान का भंडार है। नई दिल्ली में भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से बातचीत में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की समावेशिता इसकी भाषाओं में झलकती है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने तक सिंधु जलसंधि स्थगित रहेगी।
इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है कि जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय तरीके से अपना जो गतिविधि है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, उसको जब तक नहीं खत्म करेगा तब तक ये संधि जो है अबेंस में यानी कि स्थगित रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अपने वक्तव्य में, उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ में नहीं चल सकता, आतंकवाद और व्यापार साथ में नहीं चल सकता और पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता।
श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान अवैध कब्जे वाले कश्मीर को खाली कर भारत को सौंप देगा।
जहां तक आतंकवाद का सवाल है उस पर बात इस मुद्दे पे होगी पाकिस्तान से कि जो हम लोगों ने आतंकियों का सूची जो दिया था उनको कुछ साल पहले, उनको हमारे हवाले करें। और जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है उस पर द्विपक्षीय रूप से ही बात होगी, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होगी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कब वो खाली करेगा अपना अवैध तरीके से उस पर जो कब्जा है उसको।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य घटक है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि अब जब भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वो केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर पर ही होगी।
आतंकवाद का कारोबार चलाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है बल्कि उसकी एक भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, इसका अनुमान आज पाकिस्तान को हो चुका है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, POK पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी।
श्री सिंह ने पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई का श्रेय स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर धान सिंह थापा को, जिन्होंने 1962 में चीन भारत युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
1928 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में जन्मे मेजर धन सिंह थापा अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर थापा लद्दाख में पैंगोंग झील के पास एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिरी जाप वन पोस्ट पर सी कंपनी की एक पलटन की कमान संभाल रहे थे। इस पलटन का काम चुशुल एयरफील्ड की रक्षा करना था। 21 अक्टूबर 1962 को चीनियों ने इस पोस्ट पर तोप और मोर्टार से तेज हमला किया। इस हमले में वहां क्षेत्र में आग लगने के साथ साथ कुछ वायरलेस सेट को भी नुकसान पहुंचा। संख्या में कम होने के बावजूद मेजर थापा और उनके साथियों ने लगातार दो बार दुश्मन द्वारा किए गए हमलों को विफल कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। लगातार हो रहे दुश्मन के हमलों से विचलित हुए बिना मेजर थापा और उनके साथी दुश्मन का मुकाबला डट कर करते रहे। इसके बाद चीनी सेना ने टैंकों की मदद से तीसरा और अधिक तीव्र हमला किया। गोला बारूद की कमी के बावजूद पलटन ने प्रतिरोध जारी रखा। जब चौकी पर आखिरकार दुश्मन ने कब्जा कर लिया तो मेजर थापा अपने ट्रेंच से बाहर निकले और दुश्मन के साथ अपने हाथों से मुकाबला किया। अंत में दुश्मन ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अपने असाधारण साहस, नेतृत्व और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका आयोजन केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर कृषि में नवीन तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा देना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल में 3 अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। इनमें मेडिकल जेनेटिक्स वार्ड, स्तनपान प्रबंधन इकाई और न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्टिंग लैब शामिल है। तीनों स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार का पहला अस्पताल है जहां मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की शुरुआत की गई है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने जनता के हित में कई नीतिगत निर्णय लिए हैं और सरकार लगातार कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है।
हमने मेडिकल जेनेटिक विभाग का आज उद्घाटन किया, जो कि पूरे देश में 4th और दिल्ली राज्य में पहला ऐसा सेंटर है, जिसके माध्यम से वो बच्चे जो पैदा होने के साथ कई बीमारियों को अपने जेनेटिक्स में लेके पैदा हुए हैं, उनका इलाज संभव हो पाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि हर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इस तरीके का मेडिकल जेनेटिक विभाग जरूर होना चाहिए, जिससे लोगों को ऐसी असंभव इलाज दिखाने वाली बीमारियों को भी इलाज मिल सके।
वहीं इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी अधूरे स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा कर जनता को समर्पित करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि दिल्ली सरकार कल अपनी 100 दिन की उपलब्धियों को रखते हुए भविष्य का रोड मैप प्रस्तुत करेगी। राजधानी में भाजपा सरकार के 100 दिन होने के उपलक्ष्य में श्री सचदेवा ने आज कहा कि सरकार 100 दिन की अल्प अवधि में एक सकारात्मक छवि बनाने में कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि शहर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर 10 लाख का हेल्थ कवर देना, दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट देना, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों में GPS लगाना और 400 देवी योजना बसें चलाना सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है।
दिल्ली में पिछले कई सालों से नालों की सफाई के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया, चोरी की गई, लेकिन अब लोगों को नाले साफ होते हुए दिख रहे हैं, नलका उठता हुआ दिख रहा है और सड़कों पर भी जिस तरह से सफाई अभियान अभी शुरू किया है उस सफाई अभियान का एक परिणाम दिखाई देने लगा है। लोग मानते हैं कि हाँ दिल्ली में सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है। और एक विषय जिसका बार बार जिक्र आता है कि महिला सम्मान योजना, तो मैं आपको निश्चिंत करता हूँ लगातार ये सरकार अपनी योजना पर काम कर रही है। बजट का आवंटन कर दिया गया है और शीघ्र ही एक समयबद्ध सीमा के अंदर ये योजना भी हमारी बहनों के लिए होगी।
राजधानी में गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने आज कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं के कामकाज की समीक्षा की और उनके तैयारियों का आकलन किया। बैठक के दौरान आवासीय क्षेत्रों, अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंडों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान कृष्णनगर के विधायक डॉ अनिल गोयल भी उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज नई दिल्ली के किलोकरी में पहली वाणिज्यिक रूप में अनुमोदित स्टैंड अलोन यूटिलिटी स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सूद ने परियोजना के बारे में बताया कि ये भारत के साथ ही राजधानी दिल्ली के लिए बिजली के क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि इसे और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा, विशेषकर उन अनधिकृत कॉलोनी क्षेत्रों में जहां जमीन की कमी है और जहां ग्रिड मौजूद नहीं है।
ये एक साउथ एशिया का सबसे बड़ी फैसिलिटी और आने वाले समय में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की गारंटी है और प्रयास करेंगे हम इसे शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर हम इसे शुरू करेंगे।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा ने भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान आज देश के प्रथम नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान एडीबी अध्यक्ष ने साहिबाबाद से दुहाई डिपो स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और इसकी सेवाओं का प्रत्यक्ष अनुभव किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने अपने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। नया पाठ्यक्रम शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू होगा। बीटेक डिग्री के अतिरिक्त एक ऑनर्स प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। स्नातक छात्र अब अपने तीसरे वर्ष के अंत में आईआईटी दिल्ली में किसी भी उपलब्ध एमटेक कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे छात्र 5 साल में स्नातक और परास्नातक दोनों डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी अपने स्थापना दिवस और माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती के अवसर पर 31 मई को एक विशेष नाट्य प्रस्तुति कर्म योगिनी माता अहिल्या का आयोजन करेगा। इस नाटक में माता अहिल्याबाई होलकर की कहानी प्रस्तुत की जाएगी। इसका आयोजन सीसीआरटी के नए दिल्ली स्थित परिसर में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में एक अंतर आयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की रणनीतियों पर चर्चा हुई। ये बैठक कल हुई, जिसमें प्रमुख मंत्रालयों, आयुष संस्थानों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में 4 राज्यों के 373 चुनाव कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के 8वें बैच की आज शुरुआत की। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागी अंतिम मतदाता सूची के संबंध में प्रथम और द्वितीय अपील से संबंधित प्रावधानों से परिचित होंगे। प्रशिक्षण प्रतिभागियों की व्यवहारिक समझ को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी का पुस्तकालय नवीकरणीय कार्य के लिए कल से 29 जून तक बंद रहेगा। अकादमी ने इस असुविधा के लिए पाठकों से खेद प्रकट किया है। दिल्ली में आज दोपहर के समय दिनभर धूप रहने के बाद शाम में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने तक सिंधु जलसंधि स्थगित रहेगी। दिल्ली में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार कल अपनी 100 दिन की उपलब्धियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं के कामकाज की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।